ಈಶ್ವರ
ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನ್ ಮಾಯೆ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿ ಮಚೇಜನಾಧಿ ಗಚ್ಛಿ. जब इंसान जो काम करता है, जो पापी करता है, जो धर्मी कर रहे ईश्वर की, उससे जब उसमें तो पाप पुण्य की तो कोशिश में ये नहीं आ जाता है तो गर्मी को क्यों हम वो कहें, तो ईश्वर की इच्छा से वो कर रहा है.
ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी कहूंगा इस विषय. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात पूछी
आपने. एक बात पूछी है गीता जी की, बहुत ही सुंदर बात पूछी. कहते हैं गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषुं तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, ये श्लोक आता है. 18वां अध्याय का 61वां श्लोक है, 60वें बाद एक. तो इसमें कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में परमात्मा रहते हैं. ये सभी मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, अहम सर्वभूताशय स्थित, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित. 15वां अध्याय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान वपुवनं च. 15वां अध्याय 15वां श्लोक में भी यही बात बताते हैं, मेरे से स्मृति अपूर्ण होता है. और यहाँ पे कहते हैं कि यंत्रारूढ़ानी माया, माया यंत्रारूढ़ों को माया से भगवान ही भ्रमण करवाते हैं. तो ये बात गीता में लिखी है. इसमें शंका क्या है, खूब आप लोग भी ध्यान देकर सुने, बड़ी अच्छी बात है. भगवान सब करवाते हैं तो हम पाप करें, पुण्य करें, अच्छा काम मंदा करे, जो कुछ कराए वो भगवान ही करवाते हैं. फिर हम क्या करें, हम तो परवश हैं. ईश्वर करवावे तो किसकी ताकत है जो दूसरा कर दे. ईश्वर जब करेंगे तो अन्यथा कर्तुम का ईश्वर को उल्ट फेर कैसे करता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर. ईश्वर करने में, न करने में और उल्ट फेर करने में समर्थ है, उसका नाम ही ईश्वर है. और ईश्वर करवाते हैं तो राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई. वो कराता जैसे ही करते हैं, उससे अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता, किसी की ताकत ही नहीं है. तो ईश्वर ही सब हमारे से पाप पुण्य करवाते हैं, ये बात मालूम होती है. तो और कहते हैं कि तुम शास्त्र के अनुसार करो, तो शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे मत करो. और वेदों में अधिक बात में विधि और निषेध दोनों आते हैं, ऐसा करना चाहिए ऐसा न करना चाहिए. विधि में, शास्त्रों में, स्मृतियों में जगह जगह ऐसी बात आती है. व्यवहार में भी कहते हैं तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, शास्त्र निषिद्ध काम न करो, शास्त्र विहित करो, ऐसा आता है. तो यह बड़ा विरोध है. हमारे को कहा जाए तुम करो और इधर भगवान करवाते हैं, फिर हम क्या करें. तो हम परवश होकर करते हैं पाप, और करना ही पड़ता है पाप भी, भगवान करवाते हैं. तो ये शंका है, बड़ी सुंदर शंका है, बड़ी अच्छी है, शास्त्रोक्त बात है. अब इसका समाधान आप लोग सुने. दो बात होती है, एक होता है कर्म करवाना, एक होता है फल भोगवाना. तो कर्म करवाने में ईश्वर नहीं है, फल भोगवाने में है. जैसे मनुष्य करता है, कर्ता के अनुसार ही भोगता होता है. और अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाशुभम भुंगते कल्पकोट ना भुगतं चीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि. तो अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं. ना भुगतं चीयते कर्म, बिना भोगे कर्म क्षय नहीं होता. कल्पकोट शतैरपि, सैकड़ों कल्पकोटि चले जाए तो भी अपना किया हुआ कर्म अपने को भोगना ही पड़ता है, तो वहाँ भी अपना किया कर्म भोगता है और अपना कर्म वो कर भगवान के करवाते हैं। तो वास्तव में दो बात है, एक कर्मों का करना और एक उसका फल भोगना, ये दो विभाग है। तो ये जो श्लोक है ये फल भोगाने के लिए है, कर्म करवाने के लिए नहीं है। मनुष्य कर्म करता है स्वतंत्रता से और फल भोगता है प्रतंत्रता से। बीकानेर में वहां हम गए थे जेल खाने में, तो जेली जितने थे उनके सामने कहना काम पड़ा, तो मैंने कहा कि देखो मनुष्य है वो कर्म करने में तो स्वतंत्र है पर फल भोगने में प्रतंत्र है। उनको ये बात बताई थी मैंने, कह दिया वो कि काम आपने किए अपनी मर्जी से और जेल में आते हो आप दूसरों की मर्जी से, तो आप समझते हो कि हम जेली हो गए क्या करें प्रतंत्र है, तो आप ऐसा विचार न करें कि हम पराधीन है। जितने अज्ञान पूर्वक काम करने वाले मनुष्य हैं, वे सब के सब ऐसे ही कैदी है, वे कर्म करते हैं स्वतंत्रता से, और उसका निर्धनता हो जाए, दरिद्रता आ जाए, बुखार आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, ऐसी विपरीत फल भोग में है, तो भी आप ऐसा मत समझो कि हम ही कैदी है। जितने अज्ञान पूर्वक काम करने वाले सबके सब कैदी है, कर्म करते हैं अपनी मर्जी से, फल भोगते हैं स्वतंत्रता से, शुभ काम करते हैं वे शुभ काम करते हैं करने पर उनका फल भोगते हैं, तो उसमें तो उनकी मर्जी होती है, परंतु निषिद्ध काम करते हैं निषिद्ध का फल भोगते हैं, तो फल भोगने में सब स्वतंत्र है। तो आप ही कह दिया ऐसी ग्लानी मन में न रखे, जितने प्राणी है सबकी यही दशा है, पाप करते हैं अपनी मर्जी से और फल भोगते हैं प्रतंत्रता से, ऐसी मैंने बात कही थी। तो वही बात आज आएगी, जो कर्म करने में भगवान करवाते हैं, तो ये करवाने के विषय में नहीं है, ये फल भोग के विषय में है। क्यों कि फल भोग अपनी मर्जी से, अशुभ का फल कोई भोगना चाहता नहीं, शुभ का फल तो चाहते हैं, अशुभ कर्म का फल चाहते नहीं। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय में रहते हैं, ब्राह्मण समूह को ब्रह्मण करवाते हुए कर्म करवाते हैं, यंत्रालूढ़ आदमी यंत्रालूढ़ हो गए उनको ब्रह्मण करवाते हैं मेरे से ही। तो अब इसका विचार हुआ कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने, उसका क्या तात्पर्य है। तो एक बात तो मैंने कह दी कि फल भोगने के विषय में है, अब इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन करता हूँ। नारायण 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 नारायण, इसमें ऐसा वर्णन आया नहीं है कि भाई ये फल भोगाने के विषय में है कर्म करवाने के विषय में है, ऐसा आया तो नहीं है। फिर आप कैसे कहते हो कि फल भोगाने के विषय में है। और दूसरी बात ये है कि इसके अगाड़ी का श्लोक कहता है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्ष्यसि शाश्वतम, उसके तुम शरण जो चले जाओ स्वभाव से वो शाश्वत पदी को तुम प्राप्त होंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तरह से मुक्त हो जाओगे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात, उसकी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसे शरण हो जाओ। तो ये शरण हो जाओ भी दोनों में कह सकते हैं, पाप कर्म करवाते उसमें भी, पाप कर्म नहीं करवाते उनके विषय में भी, तो एक विषय में कैसे आप कहते हो। तो आप जरा ध्यान दें, उनकी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाओगे, तो परम पद की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किए जाते हैं, पाप कर्म का विधान कहीं नहीं आता कि पाप कर्म करने से शाश्वत अविनाशी पद मिलता है। तो इससे भी यही बात मालूम होती है कि भगवान करवाते हैं तो उसके शरण हो जाओ। तो शरण हो जाने से क्या होता है कि जो कर्मों के फल भोगने में आदमी परतंत्र रहता है, तो भगवान के शरण होने से संपूर्ण कर्मों से भगवान मुक्त कर देते हैं। अगर ही भी आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा सुच, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों से मुक्त कर देंगे और पुण्यों से भी मुक्त कर देंगे। पुण्य फल होता है वो भी बंधन है, पाप का फल होता है वो भी बंधन है। और फले शक्तो, फल में जो आसक्त हो जाता है शुभ कर्म में, तो पांचवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में आता है फले शक्तो निबद्धते युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त काम कार्य न फले शक्तो निबद्धते, अपनी इच्छा से जो कर्म करता है उसे उनको बंध जाता है। तो बंधने में बरोबर है, जैसे पाप कर्मों से बंधन होता है ऐसे पुण्य कर्मों से भी बंधन होता है। ये गेरिष्ठा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशा सुरेन्द्र लोक मश्नन्ति दिव्यान् दिव्येव भोगान्। नौवें अध्याय के 19-20 श्लोकों में ऐसा आया है कि पुण्य कर्म करके यज्ञ रिष्टवा स्वर्गति प्राप्त, वे स्वर्ग की प्रतीक्षा होते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ फल भोगते तम भोगवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। वहाँ फल भोग करके एक पीछे पतन होता है, मृत्यु लोक में जाते हैं, फिर अपने कर्मों के अनुसार जो नहीं भोगते हैं। तो स्वर्ग में जाकर बोलते ये भी बंधन ही है, तो शुभ अशुभ दोनों ही कर्म बंधन है। इस वास्ते भगवान ने कहा था मेरे शरण हो जाओ। नौवें अध्याय में ये बात बताई है कि यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। यत करोषि जो कुछ करता है, यद अश्नासी जो भोजन करता है, ये दो क्रिया मनुष्य की स्वतः होती है उनके विषय में कहा। और यद जुहोषि ददासी तपस्यसि ये तीन बात शास्त्रीय कर्मों के लिए कहा। यत करोषि यद अश्नासी ये तो स्वाभाविक जो करता है, तो इसमें जितने कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से क्रिया होती है सबकी सब क्रियाएं आ गई। यत करोषि यद अश्नासी जो भोजन करता है वो भी सब तरह का भोजन आ गया। और यद तपस्वी यद करोषि यद अदासी तीन ये शास्त्रीय क्रिया आई। तत्कुरुष मदर्पण मेरे अर्पण कर दो, तो शुभा शुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। तो कर्म बंधन जो शुभ और अशुभ दोनों होते हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो शुभ और शुभ दोनों से मुक्त हो जाओगे, इनसे एक असर यही भी पड़ता है करने में पाप भी साथ में होंगे, क्योंकि फल इसका नतीजा बताया ये 27 और 28 कहते हैं शुभा शुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। कर्म बंधन दोनों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो जो करता है उसमें सब कुछ आ जाते हैं। यत करोषि पुण्यों की बात तो नहीं कही पुण्य करो, तो इसमें विचार ये करना है कि तत्कुरुष्व मदर्पणम। अब ध्यान दें आप, मेरे अर्पण करो तो किसी ब्राह्मण को किसी साधु को आप भोजन कराओगे तो आप शास्त्र निषिद्ध भोजन कराओगे, ये हो ही नहीं सकता। भोजन तो शास्त्र बेहतर साधु के जो विधान है वो करता है वैसे ही कराओगे। तो साधु है ब्राह्मण है जो सदाचारी है उसको भोजन कराया जाए उनके रुचि के अनुसार ही। और रुचि दो चीज भोजन करने में दो बात होती है, एक तो आयुर्वेद शास्त्र है और एक धर्म शास्त्र है। तो आयुर्वेद शास्त्र से विरुद्ध तो शरीर के लिए ठीक नहीं है और धर्म शास्त्र से विरुद्ध परलोक के लिए ठीक नहीं है। तो दोनों के लिए ठीक हो ऐसा ही भोजन कराओगे, तो फिर भोजन कराओगे तो उसमें कहते शुभाशुभ ऐसे कैसे कहा गाड़ी। यहाँ 18वें अध्याय में जहाँ प्रश्न है वहाँ तो अशुभ का शुभ का वर्णन नहीं है, परंतु वहाँ तो शुभाशुभ दोनों साफ कहा है। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से इस प्रकार से दोनों से मुक्त हो जाओगे, तो वहाँ अशुभ नहीं आ सकता। क्योंकि किसी को ही निमंत्रण देकर किसी को भोजन कराया जाए तो विहित ही कराया जाएगा, निषिद्ध कैसे कराया जाएगा। तो अशुभ का क्या तात्पर्य हुआ, तो इसमें एक बात है मार्मिक, जो शुभ कर्मों का फल नहीं चाहता उसको अशुभ कर्म का फल नहीं मिलता, ऐसी बात है। सब कर्म अर्पण कर देता है तो अशुभ कर्म कौन से, कि आज दिन तक जितने पहले किए हुए शुभ कर्म है वो का समृद्ध मुक्त हो जाओगे। कि तुम अपने मेरे अर्पण कर दोगे तो शुभ अशुभ दोनों बांधेंगे नहीं। तो मोक्ष से बंधन से मुक्त होने के लिए शुभ अशुभ कहा है, करने के लिए अशुभ का नहीं है विवेचन। करने में तो शास्त्र की विधि के अनुसार करोगे, निषिद्ध कैसे करोगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये पदार्थ बताए, तो पत्र पुष्प फल जल बताया, और यत करोषि ये पांच क्रियाएं बताई, तो कर्म भी भगवान के अर्पण करो, फल भी भगवान के अर्पण करो, तो भगवान के अर्पण वही होता है, विधि है शास्त्र में जो लिखा है कि ऐसा ऐसा भगवान के अर्पण करो, तो शुद्ध शास्त्र विधि किया जाएगा, निषिद्ध आचरण कैसे किया जाएगा, परंतु शुभ शुभ कर्म फल कर देने दे देने से अशुभ कर्म भी मुक्त हो जाता है, अशुभ भी उनको दंड नहीं होता। कोई अच्छा काम करता है वो तो बुरा करना चाहता नहीं, और कभी बुरा हो भी जाए तो वो बुरा कर्म भी उसे फल लागू नहीं होता, क्योंकि उसके नियत शुभ कर्म करने की है, भगवान को अर्पण करने की है, प्रसन्न करने की है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार करने की भीतर में भावना है, तो वो अशुभ नहीं करेगा। उसमें कोई यत किंचित कोई अशुभ हो भी जाएगा तो वो माफ हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा, कर्तव्य नहीं है, भूल से हो जाए तो माफी हो जाएगा, और अनेक जन्मों के शुभ अशुभ उनसे सर्व संपूर्ण से और मुक्त हो जाएगा विमोक्ष से। इसमें भी 18वें अध्याय में भी शुभा दोनों प्रकार मोक्ष से अशुभा तत्पश्चात परम शांति प्राप्त से, तो परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, तो मुक्ति की बात बताई है। तो भगवान के अर्पण किया जाएगा तो शुभ कर्म ही होगा, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करेगा तो उससे मुक्ति हो जाएगी, तो ये फलपरक ही मालूम होता है। दूसरी बात, अगर ऐसी मान ले हम कि नहीं इसमें तो साफ का है, शुभ अशुभ का कोई बात नहीं, ना फल का ना क्रिया का कोई वर्णन नहीं अलग, तो फिर ऐसा भगवान ही करवाते हैं ऐसा मान लें, तो फिर मानने से एक बड़ी भारी आफत आ जाएगी। शास्त्र गुरु और शिक्षा ये सब निरर्थक हो जाएंगे। खूब गहरी रीति से आप सोचें, जब भगवान ही कर्म करवाएंगे तो शास्त्र ने कहा कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहाँ लागू होगा? तो शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, विधि निषेध करना निरर्थक हो जाएगा, गुरु कहेगा वैसे करो तो गुरु भी निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि करेगा तो भगवान की इच्छा के अनुसार, और शास्त्र भी कैसे निषिद्ध कर्म रोक देंगे और गुरु भी निषिद्ध कर्म कैसे रोक देंगे? क्या शास्त्र और गुरु ईश्वर से ही बढ़ करके है क्या? अरे ईश्वर सबको भगवान करवाता है, तो ईश्वर करवाएगा जैसे होगा, तो शास्त्र की विधि और गुरु का शासन, शास्त्र का शासन, ये सब निरर्थ हो जाएंगे, और ये निरर्थ हो जाएंगे तो मर्यादा क्या रहेगी? फिर मनुष्य बना क्या रहा? फिर पशु पक्षियों की तरह प्रतंत्र हो जाएगा। पशु पक्षी है वो भोगने में तो शुभ अशुभ दोनों भोगते हैं, वर्ण कर्म उनके शुभ अशुभ लागू नहीं होते, क्योंकि उनके लिए विधान नहीं है, ना विधि है ना निषेध है, तो पशुओं की तरह ही मनुष्य भी प्रतंत्र हो जाएगा। इस वास्ते वहाँ दोनों कर्म नहीं लिए जा सकते, शास्त्रों का विरोध आ जाएगा, गुरु निरुद्ध हो जाएगा, शिक्षा निरुद्ध हो जाएगी, विधि निषेध सब निरुद्ध हो जाएगा। इस वास्ते वहाँ कर्मों के विषय में न लेकर के फल के विषय में ही लेना पड़ेगा। युक्तियों से ऐसा मालूम होता है और शास्त्र विधान से ऐसा मालूम होता है। दूसरी बात, हम संसार में भी देखते हैं तो राजा किसी पर प्रसन्न होता है तो वो जो प्रसन्नता लेने वाला प्राणी है प्रजा का, वो कहता है कि मैं राज्य में 10,000 रुपये जमा करना चाहता हूँ, परंतु बीच में मेरे को डाकुओं का भय है, तो मेरे लिए सहायता मिल जाए, तो राज्य से सहायता मिल जाती है। परंतु कोई ऐसा कहे कि मैं राज्य में 10,000 की चोरी करना चाहता हूँ, मेरे को राजा से सहायता मिल जाए, क्या मिलेगी? शास्त्र और राजा का ऐसी अनुमति होगी कि तुम हमारे विरुद्ध काम करो, आज्ञा के अनुसार करो तो सहायता मिलेगी, निषिद्ध करने में नहीं मिलेगी तो सहायता भी नहीं मिलेगी, और हुक्म भी नहीं मिलेगा, आज्ञा भी नहीं मिलेगी, तुम मेरे विरुद्ध काम करो, तो उसके अनुकूल काम करने से ही वे रक्षा करते हैं। तो और फिर मुक्ति हो जाए तो मुक्ति के लिए अशुभ कर्मों का त्याग, अशुभ संपत्ति का त्याग और देवी संपत्ति का ग्रहण, देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, आसुरी प्रवृत्ति बांधने के लिए होती है, और जो दैवी संपत्ति है वो उद्धार करने के लिए दैवी संपत्ति विमोक्ष आया, और यहाँ सुबह सो फले रहो मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्मों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, तो देवी संपत्ति ली जाएगी, आसुरी संपत्ति नहीं ली जाएगी। क्यों निबंध आया आसुरी मता, निबंध आसुरी संपत्ति तो बांधने वाली है। तो इन सब बातों के विचार करने से, शास्त्रों का कहना आलोचन करने से यही बात निकलती है कि ब्राह्मण ये फल परक ही है, कर्म कराने के फर्क नहीं है। यत करोशी में संध्या आती है दोनों बातें, वहाँ सुबह शुभ फल के है स्वास्थ्य, वहाँ शंका इनसे भी प्रबल शंका है वो, परंतु वहाँ भी यही बात है, इस तरह शुभ कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, शुभ शुभ फले रेवम मोक्ष से, तो फले रेवम मोक्ष से बताया है वहाँ, शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो अशुभ काम तुमने निषिद्ध कर लिया पहले वो, अथवा भूल में हो जाएगा उनसे तुम मुक्त हो जाओगे मेरे अर्पण करने से। तो यहाँ भी अगर तमेव शरणंग सरो भावेद, तुम शरण हो जा, वहाँ कर्म को और फल को अर्पण बताने की बात कही, पत्रम पुष्पम फलम जो वस्तु यद करोशी ये क्रिया, तो वस्तु और क्रिया मेरे अर्पण कर दे, मानू अपनी तू मत मान, जितने तेरे पास वस्तुएं हैं वो सब की सब मेरी है तेरी नहीं है, तो भगवान की दी हुई वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दो, और जो काम करो वो भगवान के लिए करो अर्पण कर दो। तो करने की बात सबकी सब भगवान के अर्पण की बात बताई है, और अर्पण में विहित ही होगा निषिद्ध नहीं होगा। तो कर्मों के विषय में और ये फल के विषय में ही ठीक दिखता है, सब कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो सब कर्मों में पाप कर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म सब आ जाते हैं, परंतु कर्म भगवान करवाते हैं, जैसे राजा भी अपने कानून से विरुद्ध काम नहीं करवाता, तो भगवान अपने विधान से विरुद्ध, वेद के विधान से विरुद्ध कैसे काम करवाएगा। तो इसमें कर्म पर नहीं माना जाएगा, फल पर ही माना जाएगा। शुभ अशुभ फल ही रहे मोक्ष से ही, वह भी फल से मुक्त बताया है। नौवे अध्याय में पत्र पुष्प फल जल वस्तु यत करोषि दर्शनासी जोहोषि ददासी तपस्यसि क्रियाएं, तो फल और क्रियाएं दोनों ही भगवान के अर्पण कर दो। तो वहाँ भी करने तो क्रिया है वो भी अर्पण सभी शास्त्र भेद है, वहीं शुभ अशुभ से मोक्ष से मुक्ति हो जाएगी, यहाँ भी मुक्ति बताते हैं। तो करने में जो कर्म आते हैं वो ये निषिद्ध नहीं आते, वहाँ भेद ही आएगा। भेद न करने से सब कर्म लेने से शास्त्र और गुरु और आज्ञा और शासन ये मर्यादा सबकी सब भंग हो जाएगी, इस वास्ते फल पर ही मानना चाहिए, ऐसी बात है। अब इसमें शंका हो आपको, नारायण 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 नारायण, आपकी कोई शंका रह गई हो, आप लोगों में कोई शंका हो तो बताओ, शंका आपकी कहाँ है ये आपके कहने से पता लगेगा, मैं बात कहूंगा। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ तो उसमें क्या पता आपकी कौन सी शंका है, तो जिसकी कोई शंका हो अभी बोलो। इस विषय में बहनों माताओं के भाइयों के जो शंका उठती हो वो बोलो। और शरणागति में यही बात है कि सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों से डरता है आदमी, पुण्यों से डरता नहीं है, पुण्य फल का तो चाहता है, पुण्य से फल में थी पुण्य में छन्ति मानव, पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य का फल चाहते हैं, न पाप फल में छन्ति, पाप का फल चाहते नहीं। तो पाप का फल तो दंड होता है, दुख होता है, वो कोई नहीं चाहता, तो पुण्य का फल चाहता है, तो पुण्य से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। हरेक ही जो कल्याण चाहते हैं वो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना चाहते हैं, इस वास्ते भगवान कहते हैं पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो पाप अनेक तरह के पाप है, अनेक पुण्य अनेक जन्मों के संचित, उनसे मैं मुक्त कर दूंगा, ये बात है।